ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. மீட்டே மீட்டே ஹம் சர்வகே ஔர் சாரே விஸ்வ மே விசேஷ் பாரத்வாசியோ கே ஔர் பாரத் கே பாக்ய விதாதா பரம்பிரிய பரம்பிதா பரமாத்மா சிவ பாபா ஔர் ஹம் பிராமணோ கே ஜன்மதாதா பிரஜாபிதா பிரம்ம பாபா பாப் தாதா கே சர்வ லாடலி பச்சே ஆப் சபி ஹமாரே பிரிய பிராத்தாயே ஆஜ் பஹத் குஷி ஹோ ரஹி ஹை கி ஆஜ் ஹம் பி யஹா மீட்டிங் மே உபஸ்தித் ஹுவே ஹை ஔர் ஆப் லோக் பி சபி யஹா பர் அப்னி கமாயி கர்கே ஜோலி பர்னே கே லியே பட்டி மே உபஸ்தித் ஹுவே ஹை. ஆஜ கா அப்னா விஷய ஜோ ஹை ஃபீச்சர்ஸ் சே ஃபியூச்சர். ஃபீச்சர்ஸ் கா அர்த்த ஹை சேஹரே கே ஹாவ் பாவ் யா நக்ஷ சேஹரே கே நக்ஷ யா ஃபிர் சேஹரே பர் ஹர்ஷித் முக்தா சேஹரே பர் வோ திவ்யதா ஔர் சேஹரா சர்விசபுல் தோ இஸ் சேஹரே கே த்வாரா ஹம் கேசே பவிஷ்ய அப்னா பி பனாதே ஹைன் ஔர் அன்ய ஆத்மாவோ கா பி பனாதே ஜாதே ஹைன் ஔர் பவிஷ்ய துனியா கோ பி ஹம் லாயேங்கே யஹ விஸ்வாஸ் சபி கோ திலாதே ஜாதே ஹைன். तो ये चेहरा बहुत बड़ी सेवा करता है. चेहरे के अंदर आप सभी देखेंगे कि यहां से लेकर यहां तक चेहरा उसके अंदर है. तो उसमें हमारा मस्तिष्क, भाल प्रदेश, आंखें, नाक, होठ, गाल और कुछ गला, ये सारी कर्मेंद्रियां उसमें समाविष्ट हैं. और भी कर्मेंद्रियां हैं, परंतु इतनी बात हकीकत है कि इस शरीर की जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं वो कर्मेंद्रियां अपने कर्म करती हैं और आत्मा भी अपने सूक्ष्म कर्म करती हैं. वह भी अपने मन, बुद्धि, संस्कार, जो उनकी सूक्ष्म शक्तियां कर्मेंद्रिय के रूप में हैं, तो ये सारी ही स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियां जो भी कर्म करती हैं उसका भाव, प्रतिभाव और प्रतिभा, उसका प्रभाव वो चेहरे पर आए बिगर नहीं रहता है. जितनी भी हमारे पास, हमारे सामने विविध विरोधाभासी सापेक्षित भावनाएं आती हैं, निर्माण होती हैं, जैसे कि सुख दुख, आशा निराशा, मान अपमान आदि आदि, जैसे जो भी फीलिंग्स अंदर में हमें आती हैं, रोना, हंसना, जागना, सोना, थकना, न थकना, ये सारे भाव हमारे चेहरे पर आए बिगर नहीं रहते हैं. इसीलिए कहा गया है कि चेहरा दर्पण है. और हम बच्चों का तो चेहरा विशेष रूप से सारे विश्व के लिए एक आदर्श है, एक दर्पण है, बाबा का संदेश देने का एक सबसे बड़ा प्रैक्टिकल ऐसा आकर्षण वाला साधन है जिसके द्वारा हम बहुत सेवा कर सकते हैं। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये हमारी मुख्य चार सब्जेक्ट्स हैं। हमारे इस चेहरे पर ये चारों ही सब्जेक्ट प्रैक्टिकल लाइव है। जैसे हम लाइव दृश्य देखते हैं टीवी के द्वारा, या कोई लाइव दृश्य देखते हैं, वैसे ये हमारा चेहरा, ये चारों ही सब्जेक्ट लाइव है। हम उनको जो दिखाना चाहें हम उनको दिखा सकते हैं, कल का भी दिखा सकते, आज का भी दिखा सकते और भविष्य का भी दिखा सकते हैं। इतनी ताकत है इस चेहरे रूपी दर्पण के अंदर। ये जादुई दर्पण है, जिस जादुई दर्पण के अंदर हम सतयुग से तो क्या, लेकिन शांति धाम से लेकर कलयुग के अंत तक और संगम युग की स्थापना के हर दृश्य जिसको भी हम दिखाना चाहें हम दिखा सकते हैं। अब कैसे दिखाएं? बातें बहुत सरल हैं, बहुत बार आप लोगों ने सुनी हुई भी है, और शॉर्ट में मैं इसीलिए बताना चाहूंगी कि थोड़े समय में मुझे बहुत दिल है कि मैं आप लोगों की बहुत झोली भर दूं। जीवन में जो अनुभव आए हैं उन अनुभवों के द्वारा आप लोगों की झोली भरे। जैसे आज ही बाबा ने वरदान में कहा कि मधुबन में आते हैं तो क्या होता है, हम झोली भरते हैं, कमाई करते हैं अपनी। तो यहाँ भट्टी में आए हो आप सभी कमाई करने। बड़ी प्यारी बुलबुल यहाँ के बैठी, साकार बाप दादा की मीठी मीठी यादें नजरों के आगे आ गई। बाबा जब मुरली चलाते थे साकार में, तो ऐसे ही एक बुलबुल थी, वो रोज आती थी। जैसे खास वो मुरली सुनने ही आती है, तो आप सोचो बाबा उस बुलबुल को देखकर उसको भी कहते थे, आओ मीठी बच्ची, आओ प्यारी बच्ची, क्योंकि बेहद का बाबा है ना, तो बेहद के बाबा का तो सारा ही विश्व, प्रकृति क्या, लेकिन जो भी इस संसार के अंदर दिखता है और नहीं दिखता है, सबका वो रचयिता है। हम रचना भी तो उसी की है, तो इसीलिए हम अपने फीचर्स के द्वारा नई दुनिया की रचना रचने के लिए निमित्त हैं। हमें चेहरे के द्वारा ही उनको बाबा की ओर आकर्षित करना है और उनको बाबा का बच्चा बनाना है। एक एक कर्मेंद्रिय को लेके अगर हम सोचें तो मन और बुद्धि, मन बुद्धि में बाबा ने हमें कई बातें बतलाई हैं कि मन से मनन करो, मन से दिल से बाबा को याद करो, बड़े प्यार से याद करो, मन में कोई व्यर्थ संकल्प मत चलाओ, मन को संशय में मत लाओ, मन मनन करता रहे, बुद्धि भी उसी ही प्रकार चिंतन करती रहे, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स चलते हैं वो सही निर्णय उनको देती रहे, इसके लिए हम खूब ज्ञान का और बाबा की मुरली का चिंतन करते रहें, ताकि हमें हमारी हर समस्या का जवाब मिले, क्योंकि मुरली ही वो साधन है जिसमें किसी भी क्षेत्र के, चाहे व्यक्तिगत समस्या हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राज्य की हो, देश की हो, चाहे विश्व की हो, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, सभी समस्याओं का जवाब हमें मुरली के द्वारा मनन चिंतन करें और कर्मों की गुह्य गति के राजों को खोजने में अगर हम अपनी शौक की प्रवृत्ति लगा दें तो हमें मुरलियों के द्वारा हर बात का जवाब मिल जाता है। और आप कई अनुभवी भी यहाँ बैठे होंगे, आपके सामने जिस दिन जो भी परिस्थिति आई होगी, समझो आज आप अमृत वेले निंद्रा के वशीभूत होकर के उठ नहीं पाए, तो तुरंत मुरली के अंदर हेडिंग आएगा, मीठे बच्चे अमृत वेले उठकर बाप को दिल से याद करो। जो हम नहीं कर पाए वो तुरंत मुरली की हेडिंग जो होती है या शीर्षक होता है उसमें वही बात बाबा के मधुर महावाक्य के रूप में हमें पढ़ने को मिलती है। और फिर हम कह उठते हैं कि जैसे बाबा ने आज मेरे लिए ही मुरली चलाई, मेरे पर ही मुरली थी, पर हम तो समझते हैं कि रोज मुरली मेरे लिए ही है। हम कभी भी ये ना सोचें कि इसके अंदर ये कमजोरी है, तो मुरली में जब उसकी कमजोरी की पॉइंट आती है तो अक्सर आजू बाजू बैठने वाले जिसको ये पता होता है तो तुरंत उनको देखेंगे, इशारा करेंगे या हाथ लगाएंगे कि देखो आज तुम्हारे ऊपर बाबा ने मुरली चलाई है। तो मुरली के अंदर तो मुरली का मनन चिंतन और यही हमारी परम शिक्षक के द्वारा ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला टीचर जो है उसने कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है। आज था ना मुरली के अंदर, बाबा ने कोई शास्त्र पढ़ा नहीं है, परंतु बाबा को शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। हाथ उठाएंगे जरा, थोड़ा मुझे लगता है कोई शांति धाम में तो नहीं गए होंगे, हाँ सभी यहीं विराजमान हो ना संगम युग पर, मधुबन में बाबा के डायमंड हॉल में, हाँ क्योंकि ये थोड़ा समय होता है ना, नाश्ता करके आते हैं, अमृत वेले उठे हुए होते हैं तो थोड़ा हेवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, उसमें भी सोफा पे जो बैठते हैं तो थोड़ा उनको तो और भी आराम मिल जाता है, पीछे सिर लगा सकते हैं, जो पीछे बैठे हैं वो भी थोड़ा आराम कर सकते हैं, क्योंकि वहां तक तो नजर जाएगी नहीं, और जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाबा कहते हैं ना पीछे वालों को बाबा आगे देखता है, उनके ऊपर भी बाबा की नजर होती है, ऐसे हम भी आप सभी को देख रहे हैं, आप सभी को हम समीप में पा रहे हैं, सब समीप बैठे हुए हो, इसीलिए अभी शांति धाम में नहीं जाना, अभी आप यहाँ भट्टी करने आए हो ना, तो भट्टी की गर्मी लो, उष्मा लो उसकी, हाँ पर उष्मा ऐसे नहीं लो जो आपको नींद आने लगे, इसीलिए थोड़ा अलर्ट हो के बैठना। मैं बीच बीच में कुछ बोलूंगी पूछूंगी तो पीछे वालों को भी पूछूंगी, बीच में भी, इधर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो आप लोगों को हाथ उठाकर बताना होगा ताकि मुझे भी खातरी हो कि आप मुझे सुन रहे हो, मेरे सुनने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं तो मुझे लगेगा शायद इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये चेहरा जो है हमारा,
अरे बताओ मुझे जल्दी।
तो ये चेहरा हमारा चारों ही सब्जेक्ट उनको प्रत्यक्ष करता है और वो चारों ही सब्जेक्ट पढ़ाने वाले परम शिक्षक, और फिर इस चारों ही सब्जेक्ट से हम जो पतितों से पावन बनते हैं और जो नई दुनिया बाप रच रहे हैं, तो वो नई दुनिया का भी वो साक्षात्कार कराता है। तो हम हैं साक्षात स्वरूप, भविष्य का साक्षात्कार कराने वाले। साक्षात्कार और साक्षात स्वरूप में अंतर है। साक्षात्कार क्या होता है? एक पल का होता है या दो तीन पल का होता है, जब तक देवता हमारे सामने मुस्कुराए, हमको आशीर्वाद करे या कहे मांग मांग तुझे क्या चाहिए। हमने मांगा और वो अदृश्य हो जाते हैं, वो है साक्षात्कार, जो भक्ति मार्ग में सभी चाहते रहे। अब भक्ति मार्ग की बातें तो खत्म हो गई, पूरी हो चुकी हमारी, बीत गई, और साक्षात माना साक्षात स्वरूप अभी जो हम सुनते हैं वो हम अभी धारण करते हैं, तो हमारा वह रूप बनता है। जैसे हम पतित थे अभी पावन बने, जैसे हम दुखी थे हम सुखी बने, अज्ञानी थे ज्ञानी बने, नास्तिक थे अस्तिक बने, हम गरीब थे ईश्वरीय संपत्तियों से बाबा ने हमें शाहूकार बनाया, ज्ञान रत्नों से भरपूर किया, तो बाबा ने आकर के हम लोगों को हर रीति से भरपूर किया। तो हम साक्षात ये बातों की धारणा करते हैं, और धारणा करते हैं इसीलिए आप शूद्रों के बीच में, पतितों के बीच में भी खड़े रहेंगे ना, तो आप कुछ अलग दिखेंगे। हमें स्वयं को पता नहीं चलता है इस बात का, लेकिन देखने वाले जो होते हैं ना, उनको कुछ अलग दिखाई पड़ते हैं। सुन रहे ना हमारे पीछे वाले भाई, सभी सुन रहे हैं, तो उनको आप अलग दिखते हो, कोई अलग व्यक्ति दिखते हो, और वो भी साधारण कोई व्यक्ति नहीं, कोई अलग जहां की व्यक्ति दिखते हो आप, क्योंकि आपके चेहरे पर उनको तेज दिखाई पड़ता है, पवित्रता का तेज दिखता है। और वो तेज विशेष करके कहां दिखता है? मनन किया, चिंतन किया, संस्कारों में परिवर्तन किया, तीन बात हो गई। दिल से बाबा को याद करते, मनन करते, चिंतन करते, ठीक निर्णय लेकर जीवन बनाया।
Thank you.
तो मीठे मीठे परम शिक्षक शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा नॉलेज इज पावर, ज्ञान की शक्ति भरने दिव्य बुद्धि दी, और उस दिव्य बुद्धि के द्वारा दिव्य ज्ञान मिला सृष्टि के आदि मध्य अंत का, और उस आदि मध्य अंत के ज्ञान को प्राप्त कर हमने अपने इस विश्व के अंदर कल्प में मेरा क्या रोल है, मेरा क्या पार्ट है, उसको समझ लिया, और ऐसे अपने पद्मा पद्म भाग्य को पहचानते हुए हमने भविष्य को देखा कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, नई दुनिया में जा रहे हैं। देवी देवताओं की दुनिया जो कि हमारी अपनी दुनिया थी, तो वहां मैं जब देवी देवता स्वरूप में हूं तो मेरा चेहरा कैसा होगा, मैं कैसी थी आत्मा, मेरे अंदर कौन से गुण थे, मेरा राज्य कैसा था, मेरे राज्य में क्या क्या सुख थे, वहां मेरे चेहरे पर कौन सी प्रतिभा थी, आभा थी, मेरी मुस्कान कैसी थी, मेरे कर्म कैसे थे, मेरे पास क्या क्या था, तो ये सब बातें हमको स्मृति में आ गई कि मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, आदि मध्य अंत मैं पूज्य। तो बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि देके साक्षात्कार भी कराया, साक्षात स्वरूप भी बनाया। तो हम दूसरों को जब ज्ञान सुनाते हैं तो वो हमसे प्रभावित होते हैं, ये मेहरबानी उसकी है, अपनी कोई विशेषता नहीं है, परंतु ज्ञान सुनाया, कैसे हम बाबा की याद में रहते हैं, तो हमारी लगन को देखकर, फिर हमारे निश्चय को देखकर, क्योंकि हम उनके सामने जिस निश्चय से बात करते हैं कि प्रभु सृष्टि पर आए हैं, नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, पतितों को पावन बना रहे हैं, विनाश सामने खड़ा है, कल्प पूरा हो रहा है, गीता का भगवान निराकार शिव है, ऐसी जो हम बातें, छोटा मुख बाबा कहते हैं ना, बातें हमने बड़ी बड़ी सुनाई हैं सभी को, तो वो हैरान होते हैं कि ये ज्ञान इनों के पास कहाँ से आया। तो हम ज्ञान सुनते सुनाते, फिर हमारे नेत्र, नेत्र भी हमारे क्या काम करते, बाबा ने जो ज्ञान दिया, तू आत्मा, मैं आत्मा, सभी आत्मा, और हम सभी आत्माओं का वो परम सुप्रीम सोल, वो परम पिता, परमात्मा हमारा पिता, बेहद का पिता, तो हमारे अंदर बाबा ने भ्रातृभाव जगा दिया, भाई भाई की वृत्ति का बीज डाल दिया वृत्ति में, और वृत्ति के साथ साथ हमारी दृष्टि में भी वो अभ्यास करा करा करके, स्मृति दिला दिला करके नैनों को ये आदत डाल दी। जैसे किसी को कोई आदत पड़ती है किसी भी व्यसन को खाने की पीने की, तो वो बार बार करता रहता है, तो वो आदत, उस आदत का वो गुलाम बन के चलता है, वो आदत उसको जैसे चलाएगी वैसे वो चलता रहेगा। तो बाबा ने भी हम लोगों को अभ्यास करा करा कर तुम अशरीरी आत्मा हो, तुम अशरीरी हो, तुम चमकता हुआ सितारा हो, तुम बेहद बाप की संतान, तुम भी निराकार हो, तुम भी ज्योति बिंदु हो, तुम एक बिंदु, सूक्ष्म बिंदु हो, ये कहकर के बार 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 अभ्यास कराया। जब भी योग में बैठे तो बाबा ने कहा स्मृति में यही बात याद रख के बैठो और मेरे से योग लगाओ, मुझे याद करो। तो आंखों में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया, नैन रूहानी हो गए, रूह को सोचते सोचते, रूह को देखते देखते, रूहानी बाप से रूहानी कनेक्शन जोड़ते जोड़ते संबंध की स्मृति में उस सुप्रीम सोल के संबंध के स्नेह को लेते और समाते नैनों में, नैन कैसे हो गए, रूहानी नैन बन गए। जैसे नैनों से बाबा हमें निहाल करते हैं, यदि हम भी अशरीरी होकर किसी को दृष्टि देते हैं बाबा की याद में, तो वो आत्मा भी क्या हो जाती है, वो भी निहाल हो जाती है। अब ये तो अनुभव करने की बातें हैं, कई ऐसे अनुभवी मूर्त यहाँ बैठे भी होंगे। तो नैन हमारे अभी किसको देखना पसंद करते हैं, ब्राह्मणों को, पवित्र जो चीज होती है उनको देखना पसंद करते, सफेद धवल स्वच्छ, हमें वो चीजें पसंद आती हैं और हम उसको ही पसंद करते हैं। सफाई देखेंगे, स्वच्छता देखेंगे, पवित्रता देखेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, सच्ची बातें करेंगे, गंदी बातें नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, हमें ये सब सच्चाई सफाई पसंद आती है। है सभी का ये अनुभव? हाँ, सभी को अभी यही पसंद आता है ना, क्योंकि बाबा हमें सत्यखंड का मालिक बना रहे हैं। वो भी है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य बतलाता है, इसीलिए हम बच्चों से ये अपेक्षा रखता है, आशा रखता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ कभी झूठ नहीं बोलेंगे, मेरे आगे कभी छिपाएंगे नहीं। और आशा करती हूँ आप सभी ऐसे बच्चे ही बैठे होंगे यहाँ पर। तो बाबा ने धारणाएं भी सिखलाई, पवित्र बनना सिखलाया, पतितपना, जिसमें हमने अनेक जन्मों के विकर्म करके पापात्मा बने हैं, तो वो जो पापों का बोझा चढ़ा है उसको उतारना भी सिखाया कि मुझे याद करो, सिर्फ मेरी ही याद एक ऐसी याद है जो पापों का नाश करने के लिए समर्थ है। किसी भी देहधारी की याद में वो बल नहीं, वो ताकत नहीं जो हमारे पापों का नाश कर सके, हमारे पापों को जला करके भस्म कर सके। इसीलिए हट्टी एक ही है, इसीलिए कभी भी हमें इस हट्टी को छोड़कर जाने का संकल्प भी करना नहीं चाहिए। किसी को आता है संकल्प कि हम जाएं यहाँ से, हाथ उठाएं, कोई नहीं। देखो क्यों बाबा हमारा विजयी हो ना, आप सभी हम बाप समान हो और बाबा के दिल में रहते हो। कहाँ रहते हो? दिल तख्त पर, तख्त नशीन आत्मा कहाँ रहती है? अकाल तख्त पर। तो ये तख्त पर, ये भी चेहरे के अंदर आता है। जितना इस तख्त पर हम विराजमान होंगे, ये भाल प्रदेश भी क्या होगा, चमकता रहेगा, लकीरें बनेंगी भाग्य की। हाँ, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, कर्म कूटना नहीं पड़ेगा, हमारे भाग्य पर हमको नाज होगा। हाँ, बाबा कहते ना, वाह मेरा बाबा, फिर आगे बोलो सभी, वाह मेरा बाबा, वाह रे मैं, वाह मेरा पाठ, और वाह मेरी दुनिया, वाह माया। अरे माया को भी कह दिया वाह। वाह माया नहीं है, माया तो क्या है, वाह भूत है भूत। तो मीठे मीठे बाबा ने हमें एक ये चेहरा क्या दिया है, अगर कोई बोल नहीं सकता है कोई बड़ी बड़ी सेवा नहीं कर सकता है। बाबा कहते हैं हर्षित मुख चेहरा रखो, मुख से बोल अच्छे बोलो, कोई ओम शांति करे न करे आप क्या करो, आप ओम शांति करो। ये मत सोचो कि उसने मुझे तभी ओम शांति किया ही नहीं था, वो सामने आवे आप हंस करके ओम शांति करो। कई कहते हैं हाँ करते हैं, हम ऐसा वैर भाव रखते नहीं हैं, लेकिन ओम शांति कैसे किया? उसने ओम शांति कहा, मैंने भी कहा, पर कैसे कहा ओम शांति? तुरंत हम मुंह बिगाड़ेंगे, या तो ओम शांति कह के गुजर जाएंगे, देखा ना देखा करेंगे, उसकी प्रेजेंस को नोटिस नहीं करेंगे हम, तो इस प्रकार भी हम उनको फील कराएंगे इंसल्ट। परंतु इस प्रकार जब ओम शांति बोलना ही है तो प्यार से बोले ना, क्यों हम मुंह बिगाड़ के बोले, क्यों वो पुरानी स्मृति बुद्धि में रखते हुए फिर हम उसको कहें, हम प्रेम से कहें। तो बाबा ने हमें मुख दिया, मुख से सेवा करें, मीठे बोल बोलें, शांति रखें, कम बोलें, धीरे बोलें, किसी की गलती पर बहुत बड़बड़ बड़बड़ ना करें, कंटिन्यू फिर बीती हुई दूसरी बातों को भी याद करके वो भी बातें उसमें जॉइंट करके बोलते चले जाएं। ये जो हमारी कई आदतें हैं वो डिसर्विस कर देती हैं। गुस्से में बोलते हैं, क्रोध में बोलते, फिर वो विवेक नष्ट होता, फिर ना बोलने योग्य बोल बोल देते, कटु वचन निकल जाते, गाली गलोच निकल जाती, कभी कभी हाथ भी चल जाता, तो कितने नुकसान हो जाते हैं। बाबा कहते क्रोध करना भी क्या, आज क्या बताया बाबा ने, वो भी पाप है। कई बाहर नहीं करते गुस्सा, लेकिन अंदर अंदर भरा हुआ रहता है, चेहरा बता देता है, नाक फूलेगा, आंखें बड़ी हो जाएंगी, चेहरे का नक्श बदल जाएगा, रेखाएं बदल जाएंगी, आंखें लाल हो जाएंगी, मुट्ठियां बंद होंगी, मारूं के मरूं। एक गीत था, छोड़ दिया जाए या, ऐसी हालत होती है। तो इसीलिए बाबा ने हमें ये चेहरे में मन बुद्धि संस्कार नेत्र हमारा कपाल भाल प्रदेश अंदर मस्तिष्क सब कुछ हमको दिया है। एक चेहरे में आप चारों सब्जेक्ट को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, चारों ही सब्जेक्ट। सिर्फ चेहरे पर प्रैक्टिस कैसे हो, जब अंदर होगी प्रैक्टिस, नाटक करें या हम एक्शन करें उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब दिल से बोलेंगे, दिल से हंसेंगे, दिल से बाबा को याद करेंगे तो उसका फल मिलेगा। जो श्रीमत पर कर्मेंद्रियों को चलाकर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो ये श्रेष्ठ कर्म का फल उनको दर्पण बनेगा हमारा चेहरा, और उस दर्पण में उनको भविष्य दिखेगा। क्यों भविष्य कैसे दिखेगा कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन, उनको प्रश्न उठेगा। आपको बोलना नहीं पड़ेगा भाई साहब ज्ञान सुनो, ब्रह्मा कुमारी में ऐसा अच्छा ज्ञान सुनाया जाता है, इतना अच्छा राजयोग सिखाया जाता है। आपके कर्म बोले, धारणा बोले, मुख को बोलना न पड़े, आपकी धारणा से आपके चेहरे से हर्षित मुखता से वो ऐसे प्रभावित हो जाए जो वो सामने से पूछे कि आप सदा हर्षित रहते हो, आखिर भी कारण क्या है? आप रोज पहले भी थे, अभी भी हो, लेकिन पहले में और अभी में बहुत अंतर है। पहले तो आप ऐसे थे, वैसे थे, अभी आप में ये सब नहीं दिखाई पड़ता है। अभी आप बहुत अच्छे हो, आपके गुणों का गायन करेंगे। तो चेहरा हर्षित तब रहता है जब हर हर्षित, हर माना हर कर्म, सुख्यम चाहे स्थूल, दोनों कर्म इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म होता है वो कैसा होता है? ऋषि जैसा, हर्षित ऋषि। और फिर इत, इत माना एक विशेष, जो किसी का ना होता वो हमारा होता। और हम है भी तो निराले, हम शूद्र नहीं, हम क्या हैं? ब्राह्मण, संगम युगी, शिव वंशी, प्रजापिता, ब्रह्मा मुख वंशावली, ऊंचे ते ऊंचे और चोटी के ब्राह्मण है। इसीलिए जिस घड़ी हर्षित मुख चेहरा न हो, मन ने अगर व्यर्थ सोचा, बुद्धि ने अगर निर्णय ठीक नहीं दिया, नेगेटिव सोचा, नेगेटिव को स्वीकार किया और नेगेटिव को साथ दिया, संस्कार भी नेगेटिविटी की ओर गए, मना कर्म करने का ऑर्डर दिया कि तू ये कर्म कर, वो व्यर्थ सुना रहा है, इंटरेस्ट से सुन, पता तो चलना चाहिए ना कहाँ क्या होता है। हाँ, वो अलग स्थान से, हम अलग स्थान से, तो सुन तो ले, पर सुनने का भी इंटरेस्ट क्यों? तो बाबा ने कहा हियर नो इविल, कान भी चेहरे में आते हैं, कान से क्या सुनो? हे अर्जुन, मैं जो सुनाता हूँ वो सुन। और अभी तक जो सुना है, जो आँखों से पढ़ा, वो सब भूल जा। तो सी नो इविल, हियर नो इविल। फिर बाबा ने कहा टॉक नो इविल, मुख से बोलो भी मत। किसी का अवगुण देखा, व्यर्थ कर्म देखा, व्यर्थ चलन देखी, व्यर्थ चाल देखी, उसको फैलाए नहीं, इसको सुनाया, उसको सुनाया, उधर बताया, उधर बताया, नहीं। राजस्व अश्वमेघ यज्ञ है, प्रजास्व अश्वमेघ यज्ञ नहीं। मानी प्रजा को हमें ये स्व ने जो बातें सुनी सबको नहीं सुनानी है, समानी है। अगर फैलाना ही है ना, तो गुणों को फैलाओ, अवगुण नहीं फैलाओ। आप रोज एक एक दिन फिक्स करो, आज मुझे सभी के अवगुण का ही गायन करना है, आज मुझे हरेक को गुण प्रदान करना है मेरा, आज मुझे हरेक को शक्ति देनी है, आज मुझे सभी को माफ करना है, आज मुझे सभी को थैंक्स देनी है। उनकी छोटी छोटी बात को याद करके थैंक्स दो, आप उनको क्षमा करो, आप उनको प्यार से बुलाओ, वो बुलावे के ना बुलावे, मुझे आज सभी को सामने से बुलाना है। देखो फिर आप जादू, वो हैरान ही हैरान होते रहेंगे, क्या बात है, ये कभी नहीं बुलाते, आज कैसे बुला रहे हैं? वो संशय बुद्धि बनेगा, कुछ अंदर है तो नहीं है? अंदर बहुत कुछ है, जो उसको मनुष्य से देवता बना देगा, ऐसा जादू है। बाबा के ये चारों विषयों को धारण करने से ये जादू की कला बाबा ने हम बच्चों में डाली है, तो ये जादू हमें करना है। वैसे भी कहते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां क्या करती है, जादू करती है। और क्यों न करें जादू, जादूगर बाप के बच्चे हैं, तो इसीलिए जादू करना है। इसीलिए पूर्ण रूप से सरेंडर होकर चलना है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को बाबा ने बोला ना, आप ट्रस्टी बन के चलो। अधर कुमारों को भी टाइटल क्या मिला, ब्रह्मा कुमार। आप अधर कुमार नहीं हो, आप क्या हो, ब्रह्मा कुमार। तभी तो आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। अगर आप अपने को कुमार न समझो तो ब्रह्मचर्य व्रत कैसे आएगा। अब आप ब्रह्मचर्य व्रतधारी बने तो आप कुमार बन गए। माताओं ने भी कहा मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, तो माताएं भी क्या बन गई, ब्रह्मचारिणी कुमारी। और हम कुमारियों को बाबा ने क्या बोला मालूम है, जगत माता। क्यों, क्योंकि कुमारियों को जगत की सेवा के लिए आगे आना है, कुमारीपन का निकाल देना है, यानी ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ देना, ये नहीं। परंतु ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा और बाबा के ज्ञान कलश के द्वारा सभी को अमृत पिलाकर भारत भूमि क्या पूरे विश्व को स्वर्ग बना देना है। तो समर्पित हो जाओ। कैसे समर्पित होंगे, अब छोटी सी एक कहानी सुना के पूरा करती हूँ। समर्पण की जब बात आई तो समर्पण का एक भाई था, एक गांव से दूसरे गांव जाता था। कार्य उसका कर्म क्या था, चोरी करना। रोज जावे तो बीच में जंगल आवे, जंगल से पास होता था। एक दिन उसने बहुत मेहनत की, उसको बीवी थे बच्चे थे सब था, बहुत मेहनत की लेकिन कहीं से भी वो चोरी नहीं कर पाया। रोज चोरी करे और घर में लाके देवे तब खाना बने सब खावे। बहुत मेहनत के बाद बेचारे को कुछ हाथ नहीं लगा, निराश उदास जब घर लौटा तो बीच में वो जंगल आया, थक गया। उदासी निराशा क्या करती है, जीवन जीने का उत्साह खत्म कर देती है, थका देती है, डिप्रेशन में लाती है, बहुत व्यर्थ संकल्पों में लाती है। वो भी आके बेचारा थक गया, सोचा अभी कहाँ बैठ के विश्राम करूं। तो विश्राम के लिए थोड़ा देखने लगा, कुछ मिला नहीं। थोड़ा और चला तो देखा एक मंदिर था, तो सोचा चलो वो मंदिर में जाके बैठता हूँ। तो मंदिर में आकर के बैठा बैठा और फिर वही सोचने लगा कि आज मुझे कुछ नहीं मिला, आज मैं घर जाके बच्चों को क्या खिलाऊंगा, क्या जवाब दूंगा पत्नी को। ऐसे सोच करके ऐसे करके मंदिर के खंभे के ऊपर सिर रख दिया। उसका ध्यान गया अचानक, मंदिर के अंदर शिवलिंग की पिंडी थी और उसके ऊपर जलाधरी लटक रही थी और वो जलाधरी सोने की थी। तो बड़ा खुश हो गया, चला बोला भगवान ने मुझे मदद की। अब वो जलाधरी उसको उतार के ले जाने का, चोर जो था तो सोचने लगा अब मैं कैसे उतारूं। आजू बाजू देखा कोई स्थान ऐसा चढ़ने का मिला नहीं, इतनी जलाधरी ऊंची मैं कैसे उतारूं उसको। अपनी रीति से प्रयत्न किए कुछ नहीं हुआ। फिर आखिर सोचा मतलब उसको तो चोरी से था, उसको तो और कोई बात से मतलब ही नहीं था। तो आखिर उसने क्या किया, वो जो शिवलिंग की पिंडी थी ना उसके ऊपर ही चढ़ गया और चढ़ करके जलाधरी जो ही उतारने गया तो शिवजी प्रसन्न हो गए। भोलानाथ जो ठहरे बोला अरे तू क्या कर रहा है, बोला मैं चोर हूँ, मेरी आज चोरी नहीं हुई, मेरे बीबी बच्चे क्या खाएंगे, इसीलिए मैंने ये जलाधरी देखी सोने की, मैं उसको लेके जा रहा हूँ चुरा करके। बोला नहीं तू मांग मांग, तुझे क्या चाहिए। हम बच्चों ने कहा हमको 21 जन्मों की क्या चाहिए। हम भी तो चढ़ गए हैं ना, लेकिन गलत नहीं चढ़े हैं। वो गलत चढ़ गया था, वो भी चढ़ गया, हमें भी चढ़ जाना है। समर्पित होना माना प्रभु के ऊपर न्योछावर होना, चढ़ जाना। तो प्रभु से उसने मांग लिया, उसको मिल गया, तो हमें भी मिलेगा ना, मिलेगा पक्का। मुझे तो डाउट जाता है कि भगवान कहता तो है लेकिन 21 जन्म का देगा कि नहीं देगा, कि एक जन्म का देके खुश कर देगा, क्या करेगा। पक्का निश्चय है। अरे निश्चय है तो विजय आपके भाल पर चमक रहा है। हर्षित मुख चेहरे पर सोने में क्या लगा, सुहाग लग गया। तो ये विजय का तिलक भी कहाँ आया, चेहरे पर। जितने आप निश्चय बुद्धि होंगे उतना आपका चेहरा विजयी, और विजयी चेहरा कैसा होता है, खुश खुशहाल, खुशनुमा चेहरा। देखने वाला कहेगा अरे भाई क्या बात है, लॉटरी लगी क्या, इतने खुश हो, तुम्हारे पांव भी धरती पर नहीं। हाँ यहाँ पर भी, हाँ अभी तो सब धरती पर बैठे हैं, नहीं तो अक्सर कोई कोई धरती से सचमुच ही धरती छोड़ देते हैं, धरती छोड़ के उड़ने लगते हैं, क्योंकि नींद में भी तो बड़ा आनंद है। नींद जैसा सुख कहाँ नहीं भाई, है कहाँ, सब कुछ भूल जाता है। बाबा भी कहता है ना सब भूल जाओ, हम भी भूल जाते हैं, और बहुत अच्छा देखते हैं जब उनको पूछो ना क्या हुआ आपको अनुभव क्या हुआ, बात मत पूछो, इतना शांति में चले गए हम, इतना शांति 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 क्यों नहीं होगी, निंद्रा क्या है, अशरीरी अवस्था ही तो है, तो शांति तो मिलेगी। तो सुना सभी ने, तो इसीलिए चढ़ जाना है किस पर, बाप पर, माना बाप पर हक लगाना है, अधिकार लगाना है कि मैं पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ूंगा। तो बाबा भी कहते हैं हाँ मीठे बच्चे मैं तो आया ही तुम्हारे लिए हूँ। हर मुरली में कहता है मैं ब्राह्मणों के बीच बोलता हूँ, ब्राह्मणों को ही सुनाता हूँ, ब्राह्मणों के लिए ही मुरली चलती है, ब्राह्मणों के आगे ही गीता का ज्ञान जो दुनिया में प्रसिद्ध है वो ज्ञान ब्राह्मणों ने ही सुना है। कितना ऊंचा भाग्य है। तो रूहानी नशा चढ़ाए, तो ये नशा भी कहाँ चढ़ा, दिमाग में चढ़ता है ना। कहते जब दिमाग में नशा चढ़ जाता है तो क्या होता है, पांव लड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन हम अगर रूहानी नशे में रहेंगे तो लड़खड़ाते हुए पांव, गलत दिशा में जाने वाले पांव, गलत मार्ग पर चलने वाले पांव कहाँ आ जाएंगे, सही दिशा में जाएंगे, सही ठिकाने पर पहुंचेंगे, और सही नशे में रहने से अपने नशे का आनंद जो है वो अनेकों को देंगे। क्योंकि किसके बच्चे हैं, इसके या इसके, किसके बच्चे हैं, लेने वाले के बच्चे हो हाँ के ना नहीं, दाता के बच्चे हो हाँ, तो हम हैं दाता के बच्चे, मास्टर दाता, इसीलिए हम सदा चेहरे से भी सबको देते जाएं। क्या देंगे? रूहानी दृष्टि देके, रूहानी नैनों से उसको रूहानी स्नेह देंगे। मुख से क्या देंगे? मधुर बोल बोल कर उसे सुख पहुंचाएंगे, दुख नहीं देंगे। दुख देना भी बाबा कहते पाप है, तो सुख देना पुण्य है, दुआ है। मन से मनन करेंगे, बुद्धि से चिंतन करेंगे, संस्कारों का परिवर्तन कर वह श्रीमत पर वो श्रेष्ठ कर्म करेंगे जो कर्म दिव्य हो जावे, देवी देवताओं का कर्म हो जाए, क्योंकि हमें भविष्य में देवता बनना है। तो सभी देवता बैठे हैं ना बनने वाले, हाँ पक्का। जिस घड़ी क्रोध आवे, कटु वचन बोलो, रूहानी दृष्टि ना हो, अशरीरी स्थिति ना हो, उस समय स्वयं को क्या समझना पड़ेगा, किस कुल का हूँ? उस समय मैं ब्राह्मण कुल का हूँ? नहीं। ईश्वरीय कुल का हूँ? नहीं। लेकिन जब मैं सही करूँ तो मैं किस कुल का हूँ? ईश्वरीय कुल का। और ईश्वर किसका बाप है, किसका बाबा है? शिव बाबा किसका बाबा है? पक्का? सब भी कहते हो मेरा बाबा, दिल से कहते हो मेरा बाबा। सुख का सागर कौन है? शांति का सागर कौन है? प्रेम का सागर कौन है? आनंद का सागर कौन है? पवित्रता का सागर कौन है? दुख का सागर कौन है? ये क्या गड़बड़ कर दी आप लोगों ने, इसको कहते उल्टा नशा। उसने आपको बराबर सुनने नहीं दिया, अब नशे में थे ना। दीदी बुलवाती जा रही है, मेरा बाबा ही तो बोलना है। लेकिन सुनना है, सोचना है, उसके बाद कर्म करना है। ऐसे ही थोड़ी हमको बोलते जाना है, रट लेना है। रटना नहीं है। बाबा कहते हैं अजपा जाप करो जरूर, रटो जरूर, लेकिन समझदारी के साथ रटो। तो इसीलिए हमें अपना फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर बनाने के लिए इन चारों ही सब्जेक्ट पर पूरा पूरा ध्यान देना है। एक भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम ना हो हमारे। अगर कहीं भी मार्क कम हो गए तो फिर हम भविष्य में उच्च पद पा नहीं सकेंगे, क्योंकि पढ़ाई से पद मिलता है। तो हम जो पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा पद क्या है, बोलो पद क्या है? बाबा ने हमें कौन सा पद बताया है? हाथ में चक्र, गदा, पद्म है, सभी के हाथों में है, ये चारों ही हाथों में अस्त्र शस्त्र। परंतु अभी हम देवता नहीं कहला सकते, अभी हमारी पूजा नहीं होगी। अभी के ये शस्त्र जो हम धारण करते हैं तो भविष्य में हमारा वो पद होगा और हम पूजने योग्य होंगे। तन भी पवित्र, हमारा आत्मा भी पवित्र और हम पूज्य स्वरूप, तो सब हमारी फिर पूजा करेंगे। अब तक हम पूज्य थे और हम भक्ति करते आए, तो अब हर्षित रहना है। पर झूठा झूठा नहीं हंसना। बाबा कहता है ना हर्षित मुख रहो, तो अभी बाबा कहता है तो करना तो पड़ेगा। अभी उसके सामने हंसने की दिल तो नहीं थी, क्या हंसे उसके सामने? ऐसा झूठा झूठा हंसना नहीं है, दिल से मुस्कुराए। थोड़ी सी भी एक लकीर भी बनी ना तो बस हो गया, बहुत मीठा लगेगा वो। दांत दिखाएंगे इतना मीठा नहीं लगेगा जितना हम एक मीठी लकीर दिल की हर्षित मुक्ता की मुस्कान दिखाएंगे। बाबा कहते देवताएं मुस्कुराते हैं, तो मुस्कुराना सीख जाएं। तभी तो बाबा ने हम बच्चों के लिए कितने प्यारे प्यारे गीत बनाए। हाँ, मुस्कुराने पर कौन सा गीत है?
आगे चलाऊं तब तक?
मुस्कुराने पर कौन सा गीत बजता है अपना बाबा की मुरली में? गाओ सभी। किसी ने अपना तो सभी ने सीख लिया ना, पीछे बैठने वाले मुस्कुराना सीख लिया सभी ने। हाँ, कभी अभी चेहरे पर उदासी तो नहीं आएगी, चेहरे की रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं जाएंगी, नैनों में रूहानी स्नेह छलकेगा। नैनों में कौन दिखाई पड़े? शिव बाबा। वो हमें क्या देखे, उसको कौन दिखाई पड़े? बाबा। नैन इतने प्यारे लगे कि बस वहां से नजर ना हटे हमारी। देखो अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो हमारी नजर हटती है, कितनी पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। 25,000, 30,000, 35,000 लोग बैठे हुए होते हैं, कितना स्नेह को समाये हुए होते हैं, और चेहरे सबके हर्षित मुख, क्योंकि बाप दादा हमारे सन्मुख। और बड़ी खुशी तो बाबा देते हैं, मैं तुम ब्राह्मणों के लिए ही आया हूं, तुम बच्चों के लिए आया हूं। तो आप सोचो हमारे भाग्य की रेखाएं कितनी गहरी है, मिटाए न मिटेगी। हम अगर यहां से कभी किसी कारण से निकल भी गए ना, माया खींच के लेके भी जाएगी ना, तो भी भगवानुवाच सतयुग में तो आ ही जाएंगे, स्वर्ग में तो आएंगे ही। की हुई कमाई जाएगी नहीं, इसीलिए ज्ञान सभी को सुनावे। बीज डालेंगे ना तो थोड़ा बहुत तो त्रेता के अंत में भी आ जाएंगे, थोड़ी बहुत तो उसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी और उसकी फिर दुआएं मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।
मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह।